ये आकाशवाणी है, अब आप आशुतोष से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने आज नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में अधिक उपज देने वाली 109 किस्मों के बीज जारी किए। उन्होंने कहा कि जलवायु अनुकूल और अधिक उपज देने वाली इन किस्मों से किसानों की आय बढ़ेगी। 61 फसलों की इन 109 किस्मों में 34 खेती की और 27 बागवानी की किस्में हैं। खेत फसलों में बाजरा, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास और अन्य फसलों के बीज शामिल हैं, जबकि बागवानी फसलों में फल, सब्जी, कंदमूल, फसले, फूल और औषधियों के बीज शामिल हैं। श्री मोदी ने मोटे अनाज का उल्लेख किया और कहा कि लोग पोषक खानपान की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उन्होंने प्राकृतिक खेती के लाभ की चर्चा करते हुए कहा कि जनता का जैविक कृषि पर भरोसा बढ़ रहा है। किसानों ने प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी की। श्री मोदी ने नई किस्मों को विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों की सराहना की। वैज्ञानिकों ने बताया कि वे प्रधानमंत्री के सुझावों के अनुरूप काम कर रहे हैं। बाद में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज किसानों के लिए ऐतिहासिक दिन है। श्री चौहान ने कहा कि इन फसलों के बीज जलवायु अनुकूल हैं और खराब मौसम में भी अधिक पैदावार दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि ये किस्में पोषक तत्वों से भरपूर हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि इनसे किसानों की आय बढ़ेगी, पैदावार में इजाफा होगा और लागत घटेगी। हमारे संवाददाता ने कार्यक्रम में मौजूद कुछ किसानों से बातचीत की है। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देने वाले बागवानी क्षेत्र के लिए विशेष रूप से लाई गई फसल बीमा योजना को लागू करने की तैयारियां की जा रही हैं। इस योजना से सैकड़ों किसान लाभान्वित होंगे। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य मौसम के प्रतिकूल प्रभावों और प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की रक्षा करने के अलावा हितधारकों की दीर्घकालिक मांग को पूरा करना है। प्रस्तावित फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों के कारण प्रभावित फसलों के नुकसान से किसानों को वित्तीय हानि से बचाने के लिए लाई गई है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों का खंडन किया है। सेबी ने कहा है कि उनके पास हितों के टकराव से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए पर्याप्त आंतरिक तंत्र हैं, जिसमें प्रकटीकरण ढांचा और अस्वीकृति का प्रावधान शामिल है। सेबी ने कहा कि प्रतिभूतियों की होल्डिंग और उनके हस्तांतरण के संदर्भ में आवश्यक प्रासंगिक खुलासे समय समय पर किए गए हैं। इसने कहा कि अध्यक्ष ने हितों के संभावित टकराव से जुड़े मामले से स्वयं को अलग भी कर लिया है। सेबी ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में किए गए दावों पर कहा है कि इन मुद्दों पर उचित प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। इसमें कहा गया है कि अडानी समूह की हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों की सेबी ने यथोचित जांच की है। सेबी ने कहा कि भारत के पूंजी बाजारों की अखंडता और इसके व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से संसद सत्र शुरू होने के लिए कोई विदेशी रिपोर्ट जारी कर दी जाती है। उन्होंने इस रिपोर्ट को जारी करने के समय पर सवाल उठाते हुए विपक्ष पर यह भ्रम फैलाकर देश में आर्थिक अराजकता पैदा करने का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका के शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा सेबी प्रमुख पर लगाए गए आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अपनी गाढ़ी कमाई शेयर बाजार में निवेश करने वाले मध्यम वर्ग के छोटे और मझोले निवेशकों के हित की सुरक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि वे सेबी पर भरोसा करते हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का प्रमुख भागीदार है और दोनों देश अपने पारस्परिक संबंध बढ़ाकर आधुनिक साझेदारी करने के इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि मालदीव के विकास में सहयोग से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना हमारा उद्देश्य है। डॉ जयशंकर ने मालदीव में अड्डू सुधार और तटसंरक्षण परियोजनाओं का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की यात्रा के बाद आज शाम नई दिल्ली लौट आई। उनकी इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंध सुदृढ़ करने के साथ ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों और द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय प्रवासियों के साथ मुलाकात और संवाद भी किया गया। देश के उत्तरी इलाकों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और बिहार में अगले 7 दिनों तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत में भी हल्की से सामान्य वर्षा का पूर्वानुमान जताया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।